ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्प। हर एक व्यक्ति अपनी सेफ्टी सुरक्षा चाहता है, लेकिन किससे सेफ्टी? सबसे बड़ा डर दुनिया में क्या है? वैसे तो क्यों डर लगता है, किससे डर लगता है, उसकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। किस किस बात से डर लगता है? कई ऐसे लोग होते हैं छोटी छोटी बात के लिए कह देंगे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? तो भी कई उत्तर निकलेंगे, फिर भी कहने में आएगा सबसे बड़ा डर लगता है इंसान को अपनी मृत्यु का, सबसे बड़ा डर। इसलिए कई डर के मारे क्या कह देते हैं, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगी, ऐसे भी कह देते हैं, हाय मुझे कुछ हो जाएगा, ये भी कहते हैं, लेकिन हाय मर न जाऊं, क्योंकि यही सबसे बड़ा भय है। और बाबा ने तो हमारा ये भय पहले लेसन से ही निकाल दिया कि नहीं? बाबा ने कैसे भय निकाल दिया हमारा मृत्यु से, मृत्यु का भय, कि तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो कभी अभी हम कहेंगे हमारे मुख से कभी निकलेगा हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं, कई बार निकलता है, हाय मैं तो मर गई, ये भी ऐसे कह देते हैं ना, कईयों को ये आदत होती है, हाय मर गई, ये तो मुझे मार डालेगा, यहाँ तक भी कह देते हैं, ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। या दूसरे को भी धमकाने लिए इंसान कह देता है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार डालूंगा, ऐसे भी, क्योंकि यही सबसे बड़ा भय माना जाता है। और बाबा ने हम बच्चों का ये भय सबसे पहले निकाल दिया। भले दुनिया में कहते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जलती नहीं, कटती नहीं, दुखती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, यानी प्रकृति के स्पर्श से आत्मा जो प्रकृति जो कुछ करती है, अग्नि जलाएगी, जल गीला करेगा, हवा सुखाएगी, लेकिन आत्मा इनके स्पर्श से कुछ भी परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। तो जैसे हमें बाबा ने यह निश्चय कराया कि तुम तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और केवल निश्चय ही नहीं कराया, साथ साथ अभ्यास भी कराते रहते हैं। हर रोज मुरली में बच्चों को यही कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ये देही अभिमानी स्थिति ही जो आदि का लेसन है, वही अंत का भी लेसन होगा, वही अंत में भी काम आएगा, क्योंकि आत्मा को जब देह से न्यारा होना होगा, अंत की घड़ी आएगी, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति बननी होगी, तो सबसे पहले तो यही होगी स्थिति की देही अभिमानी बन आत्मा देह से न्यारी हो जाए। इसलिए ये पहला लेसन सो अंतिम लेसन है ही है, और उसी का ही सारा अभ्यास है, योग भी उसी के आधार पर ही लगाते हैं। जब तक हम अपने आप को देही अभिमानी नहीं बनाते, तब तक बाबा की याद भी नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही राजयोग है। तो वो तो समझ गए और उसका अभ्यास भी हम कर रहे हैं, तो मृत्यु से तो हमें डर नहीं है। है किसी को डर? किसी को डर हो तो हाथ उठाए, तो यही खत्म हो जाए हा? नहीं है ना? अरे वाह, सारे बहादुर है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सारे बहादुर है तो अपने लिए ही ताली बजाओ, हम बहादुर है हा? कि मृत्यु से डर नहीं है, और कभी भी मुख से ऐसा शब्द निकलेगा भी नहीं, न खुद के लिए न किसी और के लिए, क्योंकि न हम मरते हैं न हम किसी को मार भी सकते हैं, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे वो कर्म तो हमारा पीछा करेगा ही, इस जन्म में नहीं तो अगले, नहीं तो उसके आगे, कहीं न कहीं उसका फल तो मिलेगा ही। तो इसीलिए कर्म से तो कोई छूट ही नहीं सकता है, भले किसी को मार भी डाले या हमको भी कोई मार डाले, लेकिन कर्म से तो कोई छूट नहीं सकता। इसलिए वो भय तो हमारा समाप्त हो गया है। लेकिन जो आज विषय है कि सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्प, तो कोई कहेगा सेफ्टी का साधन माना हम क्या मरने से डर रहे हैं, जो बार बार सेफ्टी की बात कहते हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम। कोई कहे ना बस हमको तो कोई डर नहीं, आओ मारो, गोली चलाओ, हमको कोई डर नहीं है। तो मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन सेफ्टी तो रखेंगे ना, हर प्रकार की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अंत के समय पर ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आत्मा की स्थिति को डावाडोल कर सकती है। तो स्थिति हमारी डावाडोल न हो, उस ऐसी परिस्थितियों को हम झेल सकें, हम अपनी स्थिति ऊंची बनाकर रख सकें, उसके लिए वो सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि हमको डर नहीं है, इसीलिए हाँ सेफ्टी का मतलब है कि डर है और इसलिए सेफ्टी चाहते हैं, वो डर की बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी है अंदर की स्थिति की। चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आए, उसमें भी मेरी आंतरिक स्थिति सेफ रहे, और वो स्थिति सेफ तब रहेगी, सुरक्षित तब रहेगी, परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति हिलेगी नहीं, हम अचल रह सकेंगे, अडोल रह सकेंगे, वो तब होगा जब हमारे अंदर शुद्ध संकल्प होंगे। तो मृत्यु तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो कितनी और बातें आती है जीवन में, उसमें हम सेफ रह सके। मृत्यु से तो कोई बचने वाला नहीं है, उसमें तो सेफ रहने की बात ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब रक्षाबंधन का की बारे में हम बताते हैं, रक्षा और बंधन, तो रक्षा किसकी हम कर सकते हैं? भाई भी बहन की क्या रक्षा करेगा? और जिस दिन मृत्यु आनी होती है, कौन किसकी रक्षा कर सकता है जो यमदूत को वापस भेज दे? वो तो होगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है एज सर्टेन एज डेथ, एज सर्टेन एज डेथ, यानी मृत्यु की तारीख भी निश्चित ही है। ड्रामा के अंदर वो भी निश्चित है कि एक दिन जन्म लिया है, एक दिन देह तो त्यागेंगे, इस शरीर में अमर तो होना ही नहीं है, न रहेंगे अमर। इसीलिए वो बात नहीं है, लेकिन जो जीवन में हमारे सामने बातें आती है, और दिन प्रतिदिन ये बातें बढ़ती जाएगी, वो जो बढ़ती जाएगी हमारे आगे परिस्थितियां, वो परिस्थितियों का हमारे ऊपर असर न हो, उसमें सेफ्टी। अब कौन सी परिस्थितियां अंत में आएंगी, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी ये जो नोटों की बात हुई, उसमें क्या सेफ्टी रखेंगे? बस गवर्नमेंट का ऐलान हुआ, खत्म, सब बात खत्म। कहाँ तक छिपाएंगे, कहाँ तक सेफ रखेंगे, कहाँ तक ये कुछ भी करेंगे, वो तो परिस्थिति का सामना करना ही है। इसमें भी कई राज हैं, कई इसमें बातें हैं, ये भी अंत की निशानी है, जिसको बाबा कहते हैं किसकी रही धूल में, किसकी दबी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए और किसकी आग जलाए, पर सफल ही उसकी होगी जो करे हरि के नाम। तो आत्मा उनसे न्यारी हो जाए। और उसके लिए आपका बहुत सुंदर क्लास अभी हुआ, करुणा भाई ने कराया, सादगी जीवन में हो। और जहाँ अगर सादगी है, कोई लोभ लालच नहीं है, हम सिंपल रहते हैं, सिंपल सब कुछ करते हैं, तो फिर डर की तो कोई बात ही नहीं है, ना हमें ज्यादा चाहिए। आवश्यकताओं के लिए तो फिर भी सब कुछ मिल जाता है, पर इच्छाएं वो तो दिन प्रतिदिन कोई कमी होनी नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज एवरीथिंग फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। लोभ के लिए जगह नहीं है। अगर कोई लोभी बन करके जमा करता रहे, एक दिन वो कैसे छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तभी तो वो एक लहर वैराग्य की तो दुनिया में चालू हो ही गई है समझो। पर उस वैराग्य की बात नहीं जिसको शमशानी वैराग्य कहा जाए। हाँ, किसी की मृत्यु होती है तो कितना शमशानी वैराग्य आता है ना। एक तो दुख होता है, हाय हमको छोड़ के चला गया, लेकिन दूसरी ओर शमशानी वैराग्य भी आता है कि एक दिन हम भी ऐसे चले जाएंगे, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे। हाँ, ये महल मारियां मकान जमीन जायदाद ये सब यही रह जाएगी। तो शमशानी वैराग्य आता है जब अर्थी को ले जाते हैं शमशान घाट में कि देखो बेचारा क्या ले गया, कुछ भी नहीं ले गया। तो हम भी ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, ये शमशानी वैराग्य हुआ। लेकिन जब अंतिम संस्कार करके लौट के आते हैं फिर क्या होता है? अब वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। हम भी एक दिन चले जाएंगे, वो भी सब भूल जाता है और वो बाकी सब बातें भूल जाती है। जाते समय शमशान में कहते बेचारा गया क्या ले गया, जब वापस आते हैं तो क्या कहते, अरे ये तो क्या नहीं छोड़ के गया, तो हम भी तो अधिकारी है। हाँ, वो तो छोड़ के चला गया लेकिन हम भी तो अधिकारी है, मैं भी इनका मामा हूँ, भतीजा हूँ, भांजा हूँ, फलाना हूँ, तो मैं भी कुछ अपना दाव रखूंगा, अपना हक रखूंगा, वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो वो जो शमशानी वैराग्य कि हम भी एक दिन चले जाएंगे, कुछ नहीं साथ लाए न ले जाएंगे, हाथ खाली जाएंगे, वो भूल जाता है। और वो वैराग्य वहीं शमशान घाट तक ही चलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो अभी तक जिंदा है ना। लेकिन जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं जीते जी मरना है, जीते जी स्वाहा होना है, सब कुछ बाबा का समझना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, नया को जोड़ना भी नहीं है, पर जो है उसको निभाना भी है, छोड़ना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया कुछ जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि फिर कब चुप्तू करेंगे, आखिर तो चुप्तू करके ही जाना है। तो इसलिए नया तो कम से कम ना जोड़े जो फिर और चुप्तू करने में टाइम लगे। लेकिन जो है उसको चुप्तू करने लिए निभाना तो है, भाग कहाँ जाएंगे, छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। हम सन्यासी तो है नहीं, बेहद के सन्यासी जरूर है पर हद के तो नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी कुछ भी जो कुछ था बाबा का उसने सफल किया। शिव बाबा का समझ करके तन मन धन को माताओं के आगे अर्पित कर दिया, सफल किया। बाबा की मुरली में आता है ना कि लौकिक बाबा का लौकिक में बच्चा था, तो एक तो बेटा छोटा था, वो तो कुछ नहीं, वो तो बाबा के साथ ही था, बेटियां तो शादीशुदा थी, पर एक बेटा था जो बड़ा था, उनके भी बाल बच्चे थे, तो उसने थोड़ा विरोध किया, कि ये तो हमारा हक है। तो बाबा ने कहा नहीं, ये चलो दादा का हक लगता है पोते पर, लेकिन बाप ने जो कमाया है उसका कोई डायरेक्ट हक नहीं लग सकता है बेटे पर। अभी भी देखो, उस दिन कानून सुनाया कि अगर माँ बाप के पास बेटा रहता है और बेटा हक नहीं लगा सकता अगर माँ बाप का मकान है, तो माँ बाप के नाम पर मकान है तो बेटा हक नहीं लगा सकता है, वो माँ बाप का ही है। अगर उस बच्चे को वहाँ रहना है तो माँ बाप के साथ प्यार प्रेम से चलना पड़ेगा, नहीं तो हक नहीं लगा सकता है कि माँ बाप निकल जाए और बेटा रहेगा, नहीं, क्योंकि जिसका है वो ही है। हाँ, ऐसे आजकल तो क्या नहीं करते, माँ बाप को बूढ़े घर में छोड़ाएंगे और नाम और मकान तो माँ बाप के नाम पर ही है और बेटे उसका मौज लेंगे। तो नहीं, माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को रख सकते हैं, अगर माँ बाप से प्यार से रहे बेटा तो। तो देखिए, दिन प्रतिदिन ये कानून भी कितने बदलते जा रहे हैं। ये सब कानून जो कुछ बनते जा रहे हैं, ये सब वैराग्य दिलाने लिए कानून है। और बाबा ने तो हमको पहले से ही दिला दिए सारे काम वैराग्य, इसीलिए समय हमारा परिवर्तन करे उसकी बजाय हम बाबा हमारा परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा हमारा टीचर है या समय हमारा टीचर बन जाए? तो समय को तो टीचर नहीं बनाना है ना, समय को टीचर बनाएंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ी प्राप्ति होगी, क्योंकि समय तो अपना अधिकार ले लेगा क्योंकि वो मालिक बन गया। जबरदस्ती का सौदा हो जाएगा, स्वेच्छा से तो नहीं होगा। इसीलिए सेफ्टी हमारी किस में है, हमारी सुरक्षा किस में है? जो बाबा कहते हैं, न्यारा भी बनो प्यारा भी बनो, इसमें हमारी सेफ्टी है। और न्यारा और प्यारा ये बनने के लिए शुद्ध संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फंसे हुए होते हैं ना तो कितने अशुद्ध संकल्प भी आ सकते हैं। शुद्ध संकल्प के साथ भी बहुत प्रकार के संकल्प हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ भी बहुत प्रकार के संकल्प हैं। शुद्ध संकल्पों में सकारात्मक संकल्प भी आएंगे, शुभ संकल्प भी आएंगे, समर्थ संकल्प भी आएंगे, शक्तिशाली संकल्प, समर्थ संकल्प, ये शुद्ध संकल्पों में ही गिने जाते हैं। सकारात्मक संकल्प भी शुद्ध संकल्पों में गिने जाते हैं, पर उसका जो अपोजिट है अशुद्ध संकल्प, उसमें सारे विकार आ जाते हैं। और बाबा ने तो हम बच्चों को इन विकारों पर जीत पाने के लिए ही सारी युक्तियां बताई है। सबसे पहला कदम देही अभिमानी स्थिति है। देही अभिमानी स्थिति ही सभी शुद्ध संकल्पों की जड़ है। जैसे देह अभिमान सभी अशुद्ध संकल्पों की जड़ है, विकारी संकल्पों की जड़ है, वैसे शुद्ध संकल्पों की जड़ है देही अभिमानी स्थिति। और जैसे ये देही अभिमानी स्थिति में एक आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, जिसको दादी जानकी रोज पहले पहला पाठ यही पढ़ाती है, मैं कौन मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा बाबा, ये अगर पाठ हर वक्त हमें पक्का है तो सदा ही हर आत्मा के प्रति शुद्ध संकल्प भी होंगे, शुभ संकल्प भी होंगे, समर्थ संकल्प भी होंगे, शुभ भावना शुभ कामना होगी सबके प्रति, अपने प्रति भी, अपने प्रति भी बहुत जरूरी है। क्यों अपने प्रति भी बहुत जरूरी है? क्योंकि हम अगर अपने प्रति रखते हैं तो औरों के प्रति भी रखना सहज हो जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो औरों के प्रति तो अच्छी भावना रखने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन खुद के प्रति अच्छी भावना नहीं है। दूसरों को तो क्षमा कर लेते हैं लेकिन खुद को क्षमा नहीं कर सकते। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तो कितना नालायक हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों को क्षमा चलो सहज है फिर भी करना, जो बाबा कहते हैं बदला मत लो बदल के दिखाओ, पर खुद को भी तो क्षमा करना होता है ना। खुद को क्षमा करेंगे तभी तो हमारे अंदर जो शुद्ध संकल्प है उनका निर्माण होता रहेगा। औरों के प्रति भी शुद्ध तब आएंगे जब पहले अपने प्रति भी शुद्ध और शुभ संकल्प हो। इसीलिए बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्प ये एक बीज है हर प्रकार की सेफ्टी के लिए, चाहे अपने तन की सेफ्टी के लिए भी। देखो आज इतने सारे जो रोग आज संसार में बढ़ते जा रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? तनाव। 80% शरीर के रोगों का जो कारण है वो तनाव है, चिंता भय। तनाव चिंता भय ये तीन ऐसे मनोरोग हैं जो मनुष्य के अंदर की को तो शरीर को भी खोखला कर देते हैं, चाहे आत्मा को तो कर ही देते हैं पर शरीर को भी खोखला कर देते हैं, और फिर उससे सारे विकार की उत्पत्ति होती है। क्रोध भी उसी से आता है, ईर्ष्या भी उसी से आती है, नफरत भी उसी से आती है, वैर दुश्मनी ये सब उसी से पनपते हैं। तो केवल मन ही दूषित नहीं होता लेकिन उसके बाद फिर तन कितना दूषित हो जाता है, कितने रोग आते हैं। तो अगर रोगों से भी बचना है, क्योंकि वैसे दुनिया में तो यही कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख अगर निरोगी काया है तो निरोगी काया के लिए भी मन को तो शांति चाहिए, और मन को शांति तब मिलेगी जब देही अभिमानी स्थिति होगी, शुद्ध संकल्प मन में होंगे, क्योंकि शांति और सुख का आधार तो पवित्रता है। बिना पवित्रता के न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो तन के सुख के लिए भी मन की पवित्रता चाहिए, केवल तन की पवित्रता नहीं। कई कहते ना भाई स्वच्छ आहार हो, स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ हो तो तन की पवित्रता होगी, बीमारियां नहीं आएगी, लेकिन उसका आधार फिर मन की पवित्रता है। तो मन की शुद्धि सभी बातों की जड़ है। अब ये जैसे हमने ये समझा कि मन की शुद्धि हर बात की जड़ है, जो भी विघ्न भी अगर आते हैं उसका कारण ये है कि मेरा मन शुद्ध नहीं है। अगर कोई समस्या आती है इसका कारण कि मेरे अंदर वो समर्थता नहीं है जो मैं उस विघ्न का सामना कर सकूं, इसीलिए मैं उसको विघ्न समझती हूँ। वास्तव में विघ्न तो कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। विघ्न क्या होता है? पहले तो वो मन में लगता है कि ये विघ्न है। अगर सचमुच विघ्न होता तो सबके लिए लगे, लेकिन किसी को लगता नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी को लगेगा नहीं 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 तो बहुत बड़ी बात है। तो है तो सारी मन की स्थिति ही। कोई किसी को थोड़ा सा पेट का दर्द होगा तो कितना चिल्लाना शुरू कर देते, और किसी को कितना दर्द होता है तो भी चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही है। हमारी दादी जानकी को आप देखिए, हम तो कई बार देख के वंडर खाते हैं। दादी को इतना कई बार शारीरिक कष्ट होता है बहुत, लेकिन फिर भी दादी का चेहरा देखो, जब भी सामने जाएंगे दादी मुस्कुरा देगी भले शरीर का कष्ट कितना भी है। और कई ऐसे लोग हैं थोड़ा सा ही होगा तो ऐसा मुंह मुरझा जाएगा जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया, ऐसा होता। क्यों? क्योंकि संकल्पों का जो भोजन मन को हम दे रहे हैं वो कैसा है। तो इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, चाहे आत्मा का ज्ञान, चाहे परमात्मा का ज्ञान, चाहे कर्मों का ज्ञान, चाहे ड्रामा का ज्ञान, इतनी गहराई है इस ये चारों बातों के ज्ञान में, और फिर उसका योग। क्योंकि ज्ञान और योग का आपस में संबंध क्या है? ज्ञान तो विस्तार है पर योग क्या है? जैसे ज्ञान भले बीज भी बाबा कहते हैं पर वो बीज की जो अंदर की शक्ति है वो शक्ति अनुभव तब होगी जब उस बीज को सींचेंगे। तो ज्ञान है बीज और फिर योग है उस बीज को सींचना, उस निश्चय के आधार से वो स्वरूप बनना, उसी से ही तो शक्ति का अनुभव होगा। भोजन खाना जैसे ज्ञान है, ज्ञान को हम सेवन करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, परंतु वो जब योग का रूप बन जाता है, वो स्वरूप बनते हैं, तब कहेंगे कि शक्ति का अनुभव हुआ। जैसे भोजन वो ब्लड बना, खून बना, उसको कहेंगे कि हाँ शक्ति मिली भोजन से। मुझे याद है कई साल पहले ये पॉइंट बहुत भाषणों में हम सुनाते थे कि आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिली, माइट क्या मिली, प्रकाश क्या मिला, शक्ति क्या मिली। तो प्रकाश तो बहुत है, ज्ञान आत्मा का ज्ञान का कितना विस्तार है। आत्मा एक बिंदु है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंडा हुआ है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा का असली धाम परम धाम है, आत्मा ज्ञान स्वरूप शांति सब बताते हैं, ये उसकी लाइट है, ये प्रकाश है आत्मा के बारे में ज्ञान। लेकिन उसकी माइट क्या है, उसे शक्ति क्या मिलती है? तो जो शक्ति है माना उसके द्वारा जो शुद्ध संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, वो शुद्ध संकल्प ही शक्ति का रूप बन जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने समझा कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान मिला, तो केवल मैं ही तो नहीं आत्मा हूँ ना, ये भी तो आत्मा है। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, ये भी तो शांत स्वरूप है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो ये भी तो प्रेम स्वरूप है, या इसका ऑपोजिट भी है, मैं उसको प्रेम स्वरूप देखूँ और मैं खुद को नफरत स्वरूप देखूँ तो भी तो शक्ति तो नहीं मिलेगी। तो वो भी प्रेम स्वरूप है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। और जैसे मैंने ये संकल्प किया, ये शुद्ध संकल्प किया, जो उसके प्रति थोड़ी नफरत या वैर या कुछ ईर्ष्या, वो एक सेकंड में खत्म हो जाए क्योंकि शक्ति मिलेगी। तो जैसे ही ये शुद्ध संकल्प हमने किया या शुभ संकल्प भी किया, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना रखी, ये शुभ संकल्प किया कि विचार अच्छा हो जाए, ये भी आगे बढ़े, इसका भी उद्धार हो, इसका भी कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, बस ये जैसे ही शुभ संकल्प किया, जो अंदर में जो वैर दुश्मनी या कोई भी बुरी भावना है वो एक सेकंड में समाप्त हो जाती है। और उससे सेफ्टी क्या मिलेगी, जो थोड़ी बहुत जो अनबन अगर होगी भी ना, वो अनबन खत्म हो जाएगी। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ। दुश्मन बनाना माना वो कब क्या कर देगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सबको अपना सच्चा मित्र बनाओ, चाहे कोई कैसा भी है उसको भी अपना मित्र बनाओ, अपना साथी बनाओ, अपना सहयोगी बनाओ। कभी भी किसी से दुश्मनी मत रखो, कभी भी नहीं। भले थोड़ा झुकना पड़े हर्जा नहीं, लेकिन किसी से दुश्मनी मोल मत लो। कोई ऐसी बात हो गई, चलो माफी मांग लो, बात खत्म। दादी जानकी, बड़ी दादी जी हमें खास कहते थे, हारमनी क्या है, पहले हारमनी कॉन्फ्रेंस होती थी, यूनिवर्सल हारमनी कॉन्फ्रेंस, पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यूनिवर्सल हारमनी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके आधार पर हारमनी हॉल ज्ञान सरोवर का तैयार हुआ। तो दादी कहती थी हारमनी माना हार मानी झगड़ा टूटा, हार मानी चलो तुम जीते हम हारे, क्या फर्क पड़ता है, हार मानी झगड़ा टूटा, हो गई हारमनी। कितना सहज है इस हारमनी को समझना। दुनिया में तो क्या क्या डेफिनेशन निकाल देंगे, कैसे एकता हो, अनेकता में एकता कैसे लाएं, फिर कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता है, इतने धर्म, इतनी जाति, इतनी भाषाएं, इतने प्रांत, इतने देश, क्या क्या नहीं है संसार में, कहाँ से एकता होगी, एक सब मिल करके एक कैसे होंगे, वन वन की काठी हो गई है। लेकिन बाबा के जब बच्चे बने, हम सब वन वन की काठी एक एक पेड़ में आ गए। वन वन की काठी माना इतने अलग अलग पेड़, अब सब सारे पेड़ की लकड़ियां एक पेड़ थोड़ी बन सकती है। लेकिन जब बाबा के बच्चे बने तो देखो क्या क्या धर्म, जाति, भाषा, क्या नहीं है संसार में, वो सब एक ईश्वरीय परिवार बन गया। सतयुग में सब एक ही ईश्वरीय परिवार होगा। कैसे एक हो गए? इस एकता का आधार क्या रहा? हम सब आत्माएं हैं, एक शिव बाबा के बच्चे हैं, बस यही ईश्वरीय परिवार है। यहाँ कोई मामा, चाचा, काका, भांजा, भतीजा, ये सास, ससुर, ननन, देवर, जेठानी, जेठ, ये कुछ भी नहीं है। जब शुरू में यज्ञ में बहनें समर्पित हुई तो परिवार के परिवार समर्पित हुए, लेकिन उस परिवार के परिवार भी कभी आपस में वो भासना नहीं आने दी कि ये कोई पति पत्नी भी है या माँ बेटी भी है। मम्मा का मिसाल देते हैं कि सब मम्मा को मम्मा कहने लगे, बाबा भी मम्मा कहते थे, हालांकि मम्मा तो बाबा की बेटी थी, अलौकिक बेटी, लेकिन सबके मुंह से भी मम्मा निकले तो पहले बाबा ने शुरू किया, ये आप सबकी मम्मा है, माँ है, अलौकिक माँ, तो बाबा ही मम्मा कहने लगे तो सारे मम्मा कहने लगे उनको, हालांकि उनसे बड़ी उम्र की बहुत बहनें थी, लेकिन वो बड़ी बहनें भी क्योंकि बाबा कहते थे तो जरूर वो भी कहेंगे। लेकिन बाबा की जो मम्मा की जो माँ थी, वो माँ भी अपनी बेटी को मम्मा कहने लगी। आप सोचो, माँ भी अपने बेटी को, क्योंकि सबकी मम्मा हो गई, सबकी माँ हो गई है? तो इसीलिए ये कितना बड़ा परिवर्तन आया, पूरी दृष्टि बदल गई। मानो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। कहाँ गए सब लौकिक संबंध, सब भूल गए। इसीलिए उसका आधार क्या था? वो आत्मिक स्थिति, वो आत्मिक दृष्टि। तभी बाबा कहते हैं सच्ची सेफ्टी जो अंत में हम बच्चों की होगी ना, वो इसी आधार पर होगी। अगर हम, कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आए, चाहे वो व्यक्ति आए, चाहे वो दुश्मन के रूप में भी आए, पर वो अगर मैं उस आत्मिक स्थिति में होंगी और वो भी उसको भी मैं उस आत्मिक स्थिति में देखूंगी, उसको तो मेरे से साक्षात्कार हो जाएगा। वो मुझे हड्डी मांस का व्यक्ति नहीं देखेगा, वो तो मुझे फरिश्ता रूप में मुझे देखेगा। और फरिश्ता रूप में देखेगा, लाइट लाइट देखेगा, वो क्या कर सकेगा। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि आपके अंदर जो प्यूरिटी की शक्ति है, वो प्यूरिटी की शक्ति इतना काम करेगी जो किसी को आपके प्रति बुरी दृष्टि जा ही नहीं सकेगी। इतनी आपकी प्यूरिटी की शक्ति काम करेगी, कोई अगर सोचे भी ना, कोई आपके ऊपर कोई बुरी दृष्टि रखना चाहे भी ना, तो भी नहीं रख सकेगा। इतनी आपकी सेफ्टी हो जाएगी, जैसे कि आपके ऊपर वो पवित्रता का कवच आ जाएगा, प्रकाश का, लाइट का कवच आ जाएगा, जो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। इतना अनुभव होगा। एक बहन मुझे अपना अनुभव सुना रही थी कि अभी ज्ञान में वो कुछ साल से चली थी, लेकिन पति उसका ज्ञान में नहीं चलता था, तो बहुत विघ्न डालता था, बहुत परेशान करता था, लेकिन वो इतनी पक्की थी जो बात मत पूछो, का मर जाऊंगी लेकिन मैं अपनी पवित्रता का जो मैंने व्रत लिया है वो नहीं तोड़ूंगी। अब वो उसका जो पति था वो भी देवी का भक्त था, तो जब नवरात्रि आई तो उसने तो देवी की पूजा शुरू कर दी, देवियों की पूजा करता रहा है। तो देवियों की पूजा में तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब वो अपना कर रहा था और ये बाबा को याद कर रही थी, और इतनी शक्ति इसने जमा की, इतनी शक्ति बन गई, बस यही कहे मैं तो शेरनी शक्ति हूँ, मैं तो काली हूँ, मैं तो दुर्गा हूँ, मैं तो अम्बा हूँ, ये खुद को कह। और वो तो उसका पूजन कर रहा है जड़ मूर्तियों का, पति जड़ मूर्तियों का पूजन कर रहा है, ये अपने अंदर वो शक्ति भर रही है। तो वो नौ दिन तो चलो आठ नौ दिन जो होते वो तो बिल्कुल इसको परेशान नहीं किया, लेकिन जब वो पूरा हुआ फिर वैसे का वैसा ही होगा और क्या, भगत तो वैसे ही होते हैं। अब उस समय तब तक तो इसने अपने अंदर इतनी शक्ति भर ली थी, और जैसे ही पति उसके सामने आया तो अपनी पत्नी से दुर्गा का साक्षात्कार हो गया। आप देखो दुर्गा का साक्षात्कार हो गया, और वो ऐसा साक्षात्कार हुआ दुर्गा का, शेरनी शक्ति, शेर पर सवारी, और वो तो डर गया उससे, कहा अरे ये तो शिव शक्ति है, और इतना उसके बाद पिघल गया, इतना पिघल गया, क्योंकि शक्तियों की पूजा तो उसने की थी और ये अपने अंदर शक्ति बरती गई उसके युगल, उसके बाद इतना पिघल गया जो उसके पांव पड़ने लगा कि सचमुच तुम तो माँ हो, दुर्गा अम्बा हो, ऐसे उसके हाथ धोने लगे, इतनी भावना जागृत हो गई। अब वो किस आधार पर हुई, उसके शुद्ध संकल्पों के आधार पर, ये नहीं कि ये तो मेरा पति ऐसा है देखो व्रत रखता है और क्या उसको पता क्या होता है पवित्रता, ये कोई नेगेटिव सोच नहीं किया उसने, उसने अपने प्रति शुद्ध संकल्प किए, मैं कौन हूँ, मैं वो शिव शक्ति हूँ, मैं वो अम्बा हूँ, मैं वो दुर्गा हूँ, और कैसे उसको वो देखती थी और ये सोचते थे नहीं ये भी शुद्ध आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है, क्योंकि उस समय तो वो शुद्धि पालन कर ही रहा था, तो उसी शुद्ध स्वरूप से उसको देखा, और सचमुच जब वो तो अपना खाली नियम पूर्वक कर रहा था, कोई शक्ति थोड़ी भर रहा था अपने अंदर, और फिर जब उस पूरा हुआ तो इसकी शक्ति उसको अनुभव हुई, और जब वो अनुभव हुई तो जो उसकी भक्ति थी वास्तव में उसकी भक्ति का उसको फल मिला, दोनों बातें कह सकते हैं, जो भक्ति की वो शुद्ध संकल्प जो किए उसका उसको फल मिला, और इसने जो शुद्ध संकल्प किए इसका फल क्या मिला, जो उसको शक्ति का रूप दिखाई दिया पति को। तो देखो ये शुद्ध संकल्पों की कितनी बड़ी कमाल है, यही तो सेफ्टी का साधन है, यही सेफ्टी का साधन है। तो शुद्ध संकल्प हम कैसे करें, जो हमारे आगे जो परिस्थितियां आए वो परिस्थितियां बदल जाएगी। एक और मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ, एक बहन आई तो कोई उनको लेकर आया, कहा कि आप ना इनको ये शिविर में आए थे तो मेडिटेशन ये सीखना चाहते हैं, तो आई थी शिविर अटेंड किया, तो एक दिन मेरे से मिलाया तो मुझे कहा जिसने जो उनको लेकर आया था, कहा कि बहन जी ये बहुत दुखी है, आप इनसे जरा मिलो और थोड़ा इनको समझाओ। तो मैं मिली उनसे और उनसे पूछा कि आखिर भाई क्यों इतनी दुखी हो, क्या बात है, क्यों इतना टेंशन है। कहती क्या बताऊं बहन जी, मेरा जो बेटा है ना बहुत नालायक हो गया है, अब सारी उसकी उसकी ग्लानी करने लगे। तो मैंने कहा आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। तो क्या वो बुरी संगत में फंस गया है, शराब पीता है, ये खाता है, ड्रग्स लेता है, पता नहीं इतना हम उसको कहते हैं वो मानता नहीं है, हमारा भी नाम बदनाम कर, बहुत कुछ कहा अपने बेटे के बारे में, और क्या उस बताती गई, और फिर साथ में ये भी कहती है मरता भी नहीं है, मर जाए तो अच्छा होगा, मर जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने मर जाए मर जाए मर जाए कहने लगी, न जाने कितनी बार का, पांच दस मिनट के अंदर। तो मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि आप सचमुच चाहती हो वो मर जाए, सचमुच चाहती हो। तो कहते नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप अगर सचमुच नहीं चाहती हो मर जाए तो कहती क्यों हो। कहती है क्या करूं बहन जी, बहुत दुखी कर दिया उसने, बहुत तंग करता है, बहुत दुख दिया है, बहुत फिर मर जाए, फिर कहती मर जाए, यानी दिमाग उसका कैसा हो गया जो समझ में नहीं आ रहा था, उसको ही नहीं समझ में नहीं आ रहा था मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैंने कहा देखो भाई, पहली बात मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन पहले मुझे बताओ कि अगर आप नहीं चाहती हो कि वो मर जाए। कहती नहीं बहन जी, कैसे मर जाए, मैंने तो इतनी मान्यता मानी, इतना मैंने व्रत किया, बेटा हो बेटा हो बेटा, और बेटा हुआ तो देखो ये दिन देखने पड़े, फिर बोलने लगे मर जाए। तो मैंने उसको कहा देखो भाई माता जी, आप पहले ये बोलना बंद करो। देखो आप भी इतना बोल रही हो, आप चाहती भी तो नहीं हो, तो आप बोलती क्यों हो? आप ये बोलना बंद करो। ये बोलना बंद कर सकती हो? अब बोलना बंद तब करे जब पहले सोचना बंद करे, क्योंकि जो मन में सोच होगा वही तो बोल में निकलेगा। तो बोलना बंद करने के लिए पहले सोचना बंद करना होगा। तो मैंने कहा आप चाहती नहीं हो, फिर सोचती क्यों हो, फिर बोलती क्यों हो? पहले आप अपने आप को बदलो और क्या करो, ये बोलना बंद करो। और जब भी मन में आए ना मर जाए, उस समय आप सोच को बदली कर दो और क्या सोचो, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ऐसे सोच सकते हो, ये आत्मा है, मर जाए की बदले आत्मा, आत्मा तो मरती नहीं है, कौन मर जाए? शरीर तो है ही विनाशी, आत्मा तो मरती नहीं है, तो मर जाए ये किसके लिए कह रहे हो? तो समझ गई थोड़ा बहुत। फिर हमने कहा देखो आप उसको आत्मा समझेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा दूसरी बात क्या करो, जब आपके सामने आप बेटा आपका आए, एक तो क्रोध के वश थी इसलिए मर जाओ कहती थी, दूसरा मोह के वश हो, तो मोह के वश होने के कारण समझते मेरा बेटा है, और मेरा बेटा है तो मैं जो कहूँ वो उसको करना चाहिए। मैंने जन्म दिया है, मैंने इतना बड़ा किया है, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मैंने किया, मैं फिर मैं भी, और मेरा बेटा मैं और मेरा, इसी में ही उसकी बुद्धि जा रही थी। और बाबा कहते हैं मैं और मेरा दोनों ही पाप की जड़ है, पाप के दरवाजे हैं। तो फिर पहले तो ये बोलना बंद करो मर जाए। दूसरा आप ये जो सोच रहे ना मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा कहना बंद करो। मेरा बेटा होकर तुम ये कर रहे हो, मेरा बेटा होकर के तुम ये कर रहे हो, तो ये मेरा बेटा नहीं है, ये भगवान का बेटा। आपने कहा ना कि भगवान के आगे मैंने इतनी मान्यताएं रखी, मुझे बेटा हो और भगवान ने मेरी मान्यता मानी और कैसे बेटा दिया, तो भगवान ने दिया है ना, तो आप इसको भगवान का समझो। तो जब भी आपके सामने आए पहले इसको आत्मा समझो, अपनी बुद्धि को बदली करो, ये आत्मा है। फिर दूसरा संकल्प ये करो कि ये शिव बाबा का बच्चा, ये भगवान का बच्चा, ये भगवान का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। अब मेरा बच्चा कहने से मोह आएगा, अब दूसरे किसी के बच्चे के लिए कहेंगे मर जाए, पर मेरा है ना, अधिकार रखते हैं तो समझते हैं कि हाँ मैं जो इसके लिए सोचूं मैं राइट हूँ। तो इसीलिए मेरा बच्चा भी नहीं कहो, ये भगवान का बच्चा है, ये ऐसे कह सकती हो? तो फिर कह पर है ना मेरा बेटा, फिर है ना मेरा बेटा? हमने कहा नहीं, आपका बेटा नहीं है, ये भगवान का बेटा है, भगवान का बच्चा है। बस ये अपना संकल्प बदली करो। फिर कहती बहन जी और क्या करना है? हाँ पता नहीं कितना कहेगी सोचा। फिर तीसरी बात मैंने कही कि जब भी आपके सामने आए आप इसकी जो अच्छी बात है ना वो सोचो, इसके अंदर कोई अच्छाई भी है, कोई अच्छा गुण भी है या सारे बुरे ही बातें हैं? तो कहती है अभी सोचने लगी, पता नहीं अच्छाई क्या है उसके अंदर। तो मैंने कहा वो शराब पीता है, ये शराब तो पीता था, सिगरेट विगरेट सब पीता था, लेकिन वो ईमानदार बहुत है, जो है ना वो सच बताता, ईमानदार बहुत है, सच्चाई का गुण उसमें है। तो हमने कहा ठीक है यही आप सोचो अंदर कि मेरे बेटे के अंदर बहुत सच्चाई है, हाँ ये भगवान का बेटा है, ये आत्मा है, ये बहुत सच्चा है, ये बहुत सच्चा है, क्योंकि सच तो बताता था ना इसको, इसीलिए वो सच सुन करके वो और कहते नहीं बताते उसको क्या पता चलेगा। तो ये भगवान का बच्चा है और ये सच्चा बच्चा है, ये सच्चा है, तो उसके प्रति जो आपके अंदर जो बुरी भावना है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इनके गुणों का चिंतन करेंगे। गुण भी तो बहुत है, भगवान का बच्चा है, भगवान सर्व गुणों का सागर है, तो बच्चा तो उनका गुण का स्वरूप तो होगा ही, कुछ तो होगा इसमें, तो इसके गुण का चिंतन करो। और चौथी बात ये करो कि आप उस समय इनको देखकर भगवान को कहो, शिव बाबा हे भगवान, ये जो प्रॉब्लम है ना, समस्या है, अब ये आपको हल करनी है, इसको बदलने की जो प्रॉब्लम है समस्या वो आपको हल करनी है, अपनी समस्या भगवान को दे दो। बाबा भी तो कहते हैं मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, तो कैसे बाबा को हम यूज करेंगे? वो प्रॉब्लम बाबा को दे दो, बाबा आप संभालो। आप अपने अधिकार में क्यों रखते हो कि ये समस्या का हल मैं ही करूंगी? जरूरी नहीं है कि आपको ही करना है, बाबा को भी कुछ काम दो, बाबा को यूज करो। भगवान आपके आपके सेवा में उपस्थित हुआ है, और कैसे उनसे सेवा लेंगे? अपनी समस्या बाबा को दे दो, चिंता मत करो, भगवान इसको ठीक कर देगा, आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ। तो चार बातें करो, एक तो मर जाओ ये मुख से बंद करो। दूसरी बात है कि इसको आप मेरा बेटा नहीं समझे, भगवान का बेटा समझो। तीसरी बात, उसके प्रति जो आप जो अच्छी बात है उसके अंदर, वो बात का चिंतन करो। ये सब शुद्ध संकल्पों के अंदर आएगा। और चौथी बात, वो प्रॉब्लम जो आपके सामने है वो ईश्वर को दे दो, और फिर 3 मास के बाद मुझे लिखना कि क्या रिजल्ट हुए। आप ये करके देखो, और साथ साथ मेडिटेशन करो। तो ये करो, और सच में 3 महीने के बाद उसने मुझे ईमेल किया कि बहन जी वो तो बदल गया है। तो अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, वो तो बदल गया है। तो फिर मैंने उसको लिखा कि अच्छा, अब आप उसको मधुबन में ले आओ, तो हम उनसे मिलेंगे। यानी कैसे परिवर्तन किया उसे, उसने मैं पूछूंगी। तो जब उसको लेकर के आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर ऐसी आदतें थी, ये थी, वो थी, इतना था, आप बदल कैसे गए? तो क्या मेरी माँ बदल गई ना? समझ गए मैं क्यों बदला? क्योंकि मेरी माँ बदल गई। अब बताओ, सचमुच बदलना किसको चाहिए था? पहले माँ को बदलना चाहिए था, और माँ सोच रही थी कि मैं बच्चे को बदल के रखूंगी, ये ऐसे गुस्सा करके, ऐसे डांट करके, ऐसे कुछ कह करके। और वो कहता था, मेरी माँ ऐसे कहती, मैं और करके दिखाऊंगा। अब कौन रोक सकता है? कोई छोटा बच्चा थोड़ी था। छोटे बच्चे को तो आप रोक सकते हो, 18 साल के से बड़ा हो गया तो आप कैसे रोकेंगे उनको? पर फिर भी सच्चा था, बताता तो था ही। तो कहने का भाव है कि कैसे शुद्ध संकल्प जो हमारे मन में अगर उत्पन्न होंगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल मिल जाएगा। क्योंकि मेरे शुद्ध संकल्प वो वाइब्रेशंस बनेंगे, वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेशंस हैं। ये नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर हम किसको देंगे तो उसके भी नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, और नेगेटिव माइनस और माइनस कोई प्लस थोड़ी बनेगा, वो और डबल माइनस हो जाएगा। अगर प्लस करना है तो प्लस को जोड़ना पड़ेगा, माइनस से प्लस नहीं बनेगा। इसीलिए हम अपने संकल्पों को बदलें, हम दूसरों के संकल्पों को नहीं बदल सकते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि भाई हर एक को तो अपना कर्म करना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं ड्रामा में होगा तो मैं ये कर दूंगा, ड्रामा में होगा, ड्रामा को इस बात में नहीं लेना है। ड्रामा तो है ही कल्याणकारी, कल्याण उसमें हर कदम पर है, पर उसमें मैं अपना कल्याण कैसे करूं, वो हर एक को अपना सोचना है। अकल्याणकारी तो कुछ है ही नहीं, और उसके लिए पुरुषार्थ तो हमको ही करना है, दूसरा तो नहीं करेगा। तो पहली बात है कि हर बात में शुद्ध संकल्प हम कैसे लाएं, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हम खत्म कर सकते हैं शुद्ध संकल्पों से। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी परिस्थितियां आती है। अब कोई बहुत नजदीकी संबंधी, बहुत निकट, बहुत प्यारा, बहुत दिल के करीब, अब वो संसार से चला जाता है तो कितना दुख होता है। परिस्थिति आई है, अब उस परिस्थिति में हम क्या शुद्ध संकल्प करेंगे? अगर ये होता, ये मुझे क्यों छोड़ के चला गया, क्या मेरा कर्म था, क्या मैंने पाप किया, अभी इतना सारा नेगेटिव हम सोच लेते, सोच सोच करके खुद को ही दुखी कर देते हैं। लेकिन उसमें भी शुद्ध संकल्प, कोई भी मेरे सामने परिस्थिति है उसमें भी शुद्ध संकल्प कि इस आत्मा का इतना ही पार्ट था मेरे साथ, बस इतना ही पार्ट आत्मा, इसलिए आत्मा को देख रहे हैं, इस आत्मा का इतना ही पार्ट मेरे साथ था। फिर उसके बाद ये आत्मा जहां भी जाएगी सुखी रहे, क्योंकि वापस तो आएगी नहीं, सुखी रहे, ये आत्मा सबका भला करे, तो भला करे, सुखी रहे, आगे बढ़े, ये तो मेरा स्वार्थ था जो मैं समझ रही थी, ये तो मेरा है, मेरे पास ही रहे, ये तो बड़ा स्वार्थ है। सचमुच हम देखते ये स्वार्थ है। मान लो कोई शरीर छोड़ता है ना, तो क्यों रोना आता है? क्योंकि सबसे पहले ये मन में आता है, हाय अभी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये स्वार्थ नहीं है, मेरा क्या होगा, कितना बड़ा स्वार्थ है ये सब कर्मों के हिसाब किताब है। और जब हिसाब किताब पूरा होता है तो कौन किसका है? इसीलिए बाबा कहते साक्षी दृष्टा होकर के इस ड्रामा को देखो। अभी तो दुख की सीन और बहुत आने वाली है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब ये मन में आए तब समझो कि मेरे मन में शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, जिसको बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। वो कैसे होगा? जब शुद्ध संकल्प मन में होंगे। अगर अशुद्ध संकल्प है तो पकड़ के रखने का लक्ष्य होगा, पकड़ो कैसे मेरा रहे, छोड़ो तो छूटो, ये हिसाब किताब पूरा हुआ। तो हिसाब किताब पूरा हुआ ये भी एक बहुत बड़ा शुद्ध संकल्प है, क्योंकि मैं आत्मा हल्की हो गई, हल्की होकर ही जाना है, बोझ खत्म करना है। 63 जन्मों का बोझ है हमारे सिर पर, कितनी आत्माओं के साथ हिसाब किताब 63 जन्मों से बनाया है, क्या नहीं लेन देन किया है, पर इस एक जन्म में हमको सब समाप्त करना है। और कैसे समाप्त करते करेंगे? बाबा कहते पहले तो योग की शक्ति से, और योग की शक्ति में भी शुद्ध संकल्प लाने हैं। कोई मन को निर्संकल्प या एकदम से ब्लैंक तो बनाने की बात ही नहीं है। श्रेष्ठ समर्थ संकल्प हम लाते हैं, स्वमान के लाते हैं, शिव बाबा के गुणों के लाते हैं, साक्षी दृष्टा इस ड्रामा को देख रहे, ये सब शुद्ध संकल्पों में आएगा। सारा जो बाबा ने ज्ञान दिया है ये सारे ही शुद्ध संकल्पों का ही स्वरूप है। और जैसे ये ज्ञान हमारे मन बुद्धि में होगा, ऑटोमेटिकली हम कितने विघ्नों से पार हो जाएंगे, क्योंकि अंत के समय ये सब बातें आएगी, इविल सोल्स भी आएगी, भटकती आत्माएं तो बहुत होगी, और हो सकता है हमारे साथ भी उनका हिसाब किताब हो, नहीं तो हमको तो परेशान नहीं करेगी, पर अगर हिसाब किताब होगा तो आएगी सामने। पर कैसे हम उनसे मुक्त हो जाएं, उनको भी शुभ भावना दे करके न्यारा प्यारा न्यारा कर दो, जाओ शिव बाबा के पास मुक्ति धाम, क्योंकि सबको जाना है एक दिन। अपने संस्कार भी सामने आएंगे, अपने संस्कारों को भी बदलने के लिए शुद्ध संकल्प ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को काट नहीं सकता, नेगेटिव को काटने के लिए पॉजिटिव ही चाहिए। और वो पॉजिटिव संकल्प जो शुद्ध संकल्प है उनसे हम अनेक विघ्नों को पार कर सकेंगे और हाई जंप दे सकेंगे। और ऐसे कई बार लगेगा वो सूली समान बात आई पर कांटे के रूप में लगी और खत्म हो गई बस, क्योंकि इतनी शक्तिशाली स्थिति थी हमारी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि आपको ऊपर जाना होगा, नीचे रह करके लड़ो नहीं, या तो ऊंचे जाओ या तो समा जाओ। जिसको बाबा दो मिसाल बाबा देते हैं, एक है कछुए का और दूसरा है पंछी का। कछुआ क्या करता है, जब देखता है कोई सामने विघ्न आया, कुछ बात आई, अपने हाथ पैर सिर अंदर कर लेता है, पत्थर जैसा बन जाता है बिल्कुल, घंटों घंटों वहीं रहता है वो एक जगह पर, आगे बढ़ता ही नहीं है कोई ऐसी बात सामने है तो। तो बाबा कहते कछुए समान न्यारे बन जाओ, एक है कछुए समान, अपने आप को अंतर्मुखी बना दो, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, बस ये भाव, मैं किसकी संतान। तो वो जो बात आएगी ना, वो आपके अंदर वो शक्ति इतनी जमा होगी, वो बात आपको लगेगी नहीं कि कोई बात हुई भी। और दूसरा बाबा कहते पक्षी बन जाओ, उड़ जाओ, छोड़ो तो छूटो, न्यारे हो जाओ, कोई सामने कोई बिल्ली आई, पक्षी उड़ गया, अब बिल्ली थोड़ी ऊपर जाएगी। तो कैसे हम उड़ेंगे, बस चले जाओ बाबा के पास, बाबा मैं आपके पास आ गया, और देखो बाबा करेगा सब कुछ, बाबा की गोद में समा जाओ, न्यारे हो जाओ। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा क्या करता है, देखता है कुछ ऐसे आता है उसको मारने, दौड़ करके माँ की गोद में चला जाता है, माँ की गोद में आ गया सुरक्षित हो गया, पिता की गोद में आ गया सुरक्षित हो गया, डर खत्म हो गया। तो मैं भी बाबा की गोद में हूँ, माँ की गोद में हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, छत्र छाया मेरे सिर पर है, मैं बाबा के संग हूँ। जिसको बाबा कई बार कहते कंबाइंड स्वरूप हो जाओ, बाबा मैं अकेला नहीं, बाबा आप मेरे साथ हैं, ये मेरे हाथ अकेले नहीं, हजारों हाथ भगवान के मेरे साथ चल रहे हैं, ये कार्य निर्विघ्न हो जाएगा। तो ये सारे शुद्ध संकल्प हम जैसे जैसे मन में करते जाएंगे, हमारे आगे वो बातें सब खत्म होती जाएगी, होती जाएगी। हमने देखा है कि जो आधे से ज्यादा जो समस्याएं हैं ना, चाहे परिवारों में समस्याएं, चाहे कोई भी और प्रकार की समस्याएं, हमारे बोल के कारण होती है। बोल, हमारे बोल कैसे हैं, क्योंकि झगड़ा उसी पर, तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, पर तुमने भी तो मुझे ऐसे कहा, बस हो गया झगड़ा। तुम अगर ऐसे नहीं कहती तो मैं भी, तू तू मैं ही चालू हो जाता है। इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, कोई ऐसा हम शब्द न बोले मुख से जो कुछ उनसे संघर्ष चालू हो जाए, क्योंकि पता तो है वो कैसा, ठीक है मेरी शुभ भावना है उसके प्रति, और फिर साक्षी दृष्टाओं के देखो जो होगा कल्याणकारी ही होगा, कम से कम मेरा कोई पाप कर्म तो नहीं बना, क्योंकि अभी समय है पाप कर्मों से मुक्त होने का। 63 जन्मों का भी पापों को खत्म करना है, और 21 जन्मों की कमाई भी करनी है, 84 जन्मों का पूरा हिसाब अभी यही हमको समझना है, 63 जन्मों का पाप का खाता खत्म करना है, और 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, तो घाटा भी खत्म करना है और इतनी बचत भी लानी है, तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी, और वो कमाई ऐसी है जो उसमें वजन नहीं है, कोई वजन नहीं है, ट्रैवल लाइट। वो कैसी कमाई है, आजकल तो कहते हैं ना ट्रैवल लाइट, बोझ उठा के मत चलो, न शरीर का बोझ, न मन का बोझ, न स्थूल रूप में आप बोझ, हल्के बनो। वजन देखते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो वजन देखते हैं, 15 किलो से ज्यादा नहीं, हाथ में 7 किलो से ज्यादा नहीं, तो ये वजन, तो मन का भी वजन कितना कितना हल्का होना चाहिए। तो हैंड बैग, 3 चीजें ले जाते हैं हम, तो कई बार ये मिसाल देते हैं, 3 चीजें होती है, एक हैंड बैग होता है, हैंड बैग माना हैंडी चीजें जो बार बार हमें चाहिए वो अपनी पर्स में रखते हैं, पैसा है या दवाइयां है या जो कुछ है, पानी है, मतलब अपने पास रखते हैं, सदा ही कभी भी खोलो उसको यूज करो, वो चीज बार बार चाहिए, वो हैंड बैग में रखेंगे। दूसरा होता है छोटी कैरी बैग, जो कैरी बैग माना ये हैंड लगेज जो ऊपर लॉकर में रखते हैं, फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में भी जाते हैं, नीचे रखते हैं, वो हमारे साथ है। और तीसरा होता है बड़ी सूटकेस, वो चेक इन कर देते हैं। वो चेक इन कर देना माना फ्लाइट में भेज देते हैं, फिर वो जब पहुंचेंगे ना अपने गंतव्य पर, वहां हमको मिलेगी। रास्ते में हम उसको खोल नहीं सकते, रास्ते में केवल हैंडबैग है और वो छोटी 7 किलो से ज्यादा वजन नहीं, तब प्लेन में चढ़ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये 3 चीजें तुम्हारी है, पर इनको लाइट रखो। कैसे लाइट रखो? हैंडबैग कौन सी है, छोटा सूटकेस हैंड लगेज कौन सा है, और चेक इन लगेज जो बड़ा सूटकेस वो कौन सा है। ये 3 चीजें जो मेरे साथ जाएगी आत्मा के साथ। तो है जो हैंड पर्स है हमारा मन, मन मन में जो आवश्यक बातें है वही रखनी है। कौन सी? जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, वो ज्ञान हर वक्त काम आए। जब भी कोई बात आए उस समय कौन सा ज्ञान यूज करना है, कौन सी पॉइंट यूज करनी है। तीनों कालों को बुद्धि में रख करके अभी क्या मुझे करना है, ये पॉइंट बुद्धि में आ जाए। ये ज्ञान की पॉइंट अपने साथ सदा मन में दोहराते रहो। ऐसे न हो कि जो नहीं करना चाहिए वो कर लिया बिना सोचे समझे। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। तो मन के अंदर हर वक्त ये श्रेष्ठ मनन चिंतन चलता रहे कि हर परिस्थिति में मैं क्या करूं बाबा के ज्ञान के आधार पर। फिर छोटी सूटकेस जो लॉकर में रखते हैं, जो कभी कभी यूज करेंगे यात्रा के दौरान, वो है बुद्धि। तो बुद्धि माना हर वक्त उस बुद्धि में गुण और शक्तियां भरी हुई हो। इस समय ऐसे समय पर कौन सा गुण मैं अपनाऊं, कौन सी शक्ति मेरे को मैं यूज करूं, वो पता चले। वो उसी का मनन चिंतन वो मन के द्वारा होगा। बुद्धि के अंदर गुण और शक्ति का अनुभव करेंगे। और फिर जो बड़ी सूटकेस है जो गंतव्य पर मिलेगी, जो डेस्टिनेशन पर मिलेगी जहां जाना है, वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्मों का सोचना नहीं है, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये क्यों सोचते हैं हम मैंने इतना किया। हो सकता है जो मैंने किया वो पिछला चुकतू किया, इसने नहीं किया माना कुछ और आगे होगा ही नहीं जो ये मुझे देवे। पहला वाला मैंने दिया माना चुकतू किया जो पहले उसने दिया होगा। इसलिए ये सोच से भी बाहर हो हम कि मैंने इतना किया इसने कुछ भी नहीं किया। अपने बच्चों के लिए भी कई माता पिता इसलिए दुखी होते हैं, मैंने बच्चों के लिए इतना किया मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। अब वो बच्चा जो आपके पास आया वो कोई कर्मों का हिसाब किताब था। अब हिसाब किताब था तो पूरा हुआ, उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए मैंने इतना किया। ये अभिमान या ये जो सोच ये भी ना है। इसीलिए जो मैं करूंगी मैं ही पाऊंगी। इसलिए अब भी हमको फल नहीं चाहिए, वो फल बाबा हमको देने वाले हैं जरूर। इच्छा मात्रम अविद्या, बस अच्छा कर्म करते जाओ, नेकी कर दरिया में डाल जिसको बाबा कहते हैं। अभी ये स्थिति है क्योंकि जो नेकी कर रहे हैं पता नहीं हिसाब किताब ये चुकतू हो रहा है या नया बन रहा है, पर इसलिए हम तो करते जाएं क्योंकि पुण्य का खाता हमें जमा करना है, पिछला खत्म करना आगे का बढ़ना है, कर्जा लेकर के नहीं जाना है। और कमाई कैसे होगी? श्रेष्ठ संकल्पों से ही कमाई होगी, शुद्ध संकल्पों से ही कमाई होगी, मन में भी बुद्धि में भी संस्कार में भी, वो भी वही आत्मा के साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और ये लोगों को पता नहीं, भले कहते कुछ नहीं जाएगा लेकिन पुण्य का खाता हम कितना साथ में ले जाएंगे ये दुनिया वाले थोड़ी जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कैसे पुण्य का खाता साथ में ले जाना होता है। और कैसे ले जाएंगे? अपने मन वचन कर्म को श्रेष्ठ करके, अपने तन मन धन को सफल करके। और जो भी बातें आती है वो श्रेष्ठ संकल्प करके, शुद्ध संकल्प करके उसको खत्म करते जाओ, वो मिटती जाएगी मिटती जाएगी। इसी के आधार से हम आत्माएं शुद्ध बनेगी, पावन बनेगी, हल्की बनेगी, सब हिसाब किताब चुकतू करके हल्की होकर के घर जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अभी 3 मिनट फिर से बाबा को याद करते हैं।